आगे सबक देखिए भाई, वलिल अब्दिल मादून मदयूनन फी मबीई सय्यिदिही वली सय्यिदिही फी मबीईही ऐ तजिबु शुफ़अतु लिल अब्दिल मादून हाल कौनिही मदयूनन दैनन मुहीतन बि रक़बतिही व कस्बिही فله الشفعة فيما باع سيده وكذا للسيد حق الشفعة فيما باع العبد المأذون المذكور بناء على أن ما في يده ملك له وللعبد المأذون مديونا في مبيع سيده ولسيده في مبيعه. آگے چند مسائل ذکر ہوں گے، اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے بھائی، شفیع اگر کوئی ایسا کام کرے جو رغبت پر دلالت کرے، اس زمین کے اندر رغبت پر دلالت کرے کہ وہ اس زمین میں راغب ہے، اس کو پسند ہے، وہ اس کو چاہتا ہے، تو اس صورت میں اس کا حق شفا ساقط نہیں ہوتا. اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ زمین سے اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے، تو اس صورتوں میں اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا. شفیع کوئی ایسا کام کرے جو اس جائیداد میں، اس زمین میں رغبت پر دلالت کرتا ہو، تو اس کا حق شفا ساقط نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو اعراض پر دلالت کرے، اعراض یعنی منہ موڑنا، کسی چیز سے رخ پھیرنا، اور اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو اس زمین یا جائیداد سے اعراض پر دلالت کرے، تو اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا. مثلا میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میری یہ زمین بیچ دو، اس کو میں نے اپنا وکیل بنا دیا. اس نے میرے لیے وہ زمین بیچ دی، اور بیچتے ہی حق شفا ملتا ہے، تو یہ جو بیچنے والا میرا وکیل تھا، یہ خود ہی اس نے شفا کر دیا. یہ کیا تھا؟ وکیل تھا، لیکن میرا پڑوسی بھی تھا. اس نے زمین زید کو بیچی، لیکن خود ہی شفا کر دیا. اب مجھے بتائیے، اسی نے زمین بیچی ہے نا، تو کسی چیز کا بیچنا، اسی جائیداد کا بیچنا، وہ اس جائیداد کو پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے یا اس سے اعراض کرنے پر دلالت کرتا ہے؟ اعراض کرنے پر. بیچ رہا ہے تو ہاتھ سے تو چیز نکل جائے گی، چلی جائے گی، تو وہ کسی اور کو بیچ رہا ہے، کسی اور کو دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اعراض کر رہا ہے. لہذا اب یہ شفا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں بھائی، اب اس کو شفے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیسا کام کیا جو کس پر دلالت کر رہا ہے؟ اس عقار سے اعراض پر دلالت کر رہا ہے. دوسری صورت، میں نے ایک شخص سے کہا کہ میرے لیے وہ فلاں زمین خرید لو، وہ میرا وکیل ہے، اس نے میرے لیے وہ زمین خریدی اور ساتھ ہی خود ہی شفا کر دیا، کیونکہ وہ زمین کا پڑوسی بھی تھا، تو کیا وہ شفا کر سکتا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں ہاں، وہ شفا کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے زمین خریدی ہے، اور خریدنا کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ رغبت پر اور پسند کرنے پر دلالت کرتا ہے، معلوم ہو وہ زمین میں راغب ہے. تو ایسا کوئی کام اسے نہیں کیا جو اعراض پر دلالت کرے، لہذا اس کو حق شفا حاصل ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو اگلا مسئلہ کتاب میں ذکر ہو رہا ہے، اس کو سمجھ لیں. وللعبد المأذون مدیونا فی مبیع سیدہ ولسیدہ فی مبیعہ. یاد رکھیے، ایک عام غلام ہے، عام غلام پر مختلف قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں. مثلا وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کو جو چیز بھی کہیں سے بھی ملے وہ اس کے آقا کی ہوتی ہے، آقا کی مملوک ہو جاتی ہے، اس کی مملوک نہیں ہوتی. اسی طرح یہ اپنی مرضی سے شادی کہیں نہیں کر سکتا، آقا اجازت دے گا تو شادی کر سکتا ہے، آقا اجازت نہیں دے گا تو شادی بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ آقا کی اجازت کے بغیر کاروبار اور تجارت بھی نہیں کر سکتا، آقا اجازت دے گا تو کاروبار یا تجارت کر سکتا ہے، آقا نے اجازت نہیں دی تو نہیں کر سکتا. تو یہ جو عام غلام ہے جس پر مختلف پابندیاں ہوتی ہیں، اس کو عبد محجور کہتے ہیں. حجر پابندی کو کہتے ہیں، حجر، ہا جیم را. تو عبد محجور، تو یہ جو عام غلام ہوتا ہے یہ عبد محجور ہوتا ہے، اس پہ پابندیاں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات غلام ذہین ہوتا ہے तो आका उसको तिजारत की इजाजत दे देता है कि जाओ काम करो, पैसे कमाओ, मेरे लिए कमा कर लेकर आओ पैसे। तो ये जो गुलाम जिसको आका ने तिजारत की इजाजत दे दी, कारोबार की इजाजत दे दी, इसको कहते हैं अब्द माजून, यानी जिसको आका ने इजाजत दी है, इजन, इजन इजाजत को कहते हैं। तो ये क्या है? अब्द माजून। तो ये जो अब्द माजून है ये जाकर तिजारत करेगा, पैसे कमाएगा और आका को लाकर देगा। ये अब्द माजून इसने तिजारत शुरू की, तो तिजारत शुरू की, जो कुछ इसके पास है, जो कुछ इसका ममलूक होगा वो किसका हो जाएगा? फौरन आका का। ये खुद किसी चीज का मालिक बन ही नहीं सकता, बस इसकी मिल्क में जो चीज आई वो आका की मिल्क में चली गई, फौरन वो आका मालिक बन गया उसका। तो इस आब्द माजून को तिजारत में नुकसान हुआ, और इतना नुकसान हुआ जिसने इसकी गर्दन का भी इहाता कर लिया, यानी इसकी जितनी कीमत थी, ये गुलाम खुद भी मसलन 10 लाख का है और इसके पास सामान्य तिजारत भी मसलन 10 लाख का है, तो इस पर इतना कर्जा चढ़ गया कि जिसने इसके रकबे का भी इहाता कर लिया, इसकी रकबे से मुराद उसकी जात है, उसकी जात का भी इहाता कर लिया और इसके पास जो सामान्य तिजारत है उसका भी इहाता कर लिया। मसलन इसकी कीमत कितनी थी? 10 लाख। सामान्य तिजारत भी कितना? 10 लाख। और इस पर कर्जा 20 लाख या 20 लाख से भी ज्यादा हो गया। तो याद रखिए, ये जो अब्द माजून है और अब मदयून हो चुका है। क्या हो चुका? मदयून, जिस पर देन है, कर्ज है। एक है मदयून जिस पर कर्जा हो, यानी उसको कहते हैं मकरूज। मकरूज ये इस वक्त क्या है? मकरूज। और जिसका कर्जा इसने देना है, जो कर्ज देने वाला है, यानी कर्ज खाह, कर्ज खाह, उसको दाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? दाइन। तो कर्ज खा को कहते हैं दाइन, और जिस पर कर्जा है यानी मकरूज, उसको कहते हैं मदयून। तो ये अब्द माजून मदयून हो चुका है, और इतना मदयून हुआ कि उसने उसके कमाई का भी और उसके रकबे का भी इहाता कर लिया है। तो याद रखिए, इसके पास अब जो कुछ होगा, जो ये कमाएगा, अब उसका मालिक इसका आका नहीं है, बल्कि उसका मालिक ये खुद बनेगा। ये खुद बनेगा, क्योंकि इसके रकबे के साथ वो दाइन का कर्जा मुतालिक हो गया है। ये अब पैसे कमाएगा और उस कर्जे को अदा करेगा। क्या करेगा? उस कर्जे को अदा करेगा। तो इसके साथ अब दाइन का कर्जा मुतालिक है। अब ये जो कमाएगा इसका मालिक ये खुद ही है, आका का नहीं है, क्योंकि इसने क्या करना है? अपने आप को उस कर्जे से छुड़ाना। तो ये चीजों का मालिक होता जाएगा और ये उनको अदा करके अपनी गर्दन को उससे छुड़वाएगा। हां, एक सूरत है कि इसका सारा कर्जा आका, इसका मालिक अदा कर देता है, तो इस सूरत में फिर यह उसी आम गुलाम की तरह बन जाएगा, यानी इसके पास जो चीजें होंगी वो सारी उसी तरह आका की ममलूक हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? लेकिन जिस वक्त ये मदयून हो गया इतना ज्यादा, अब इसके पास जो कुछ है वो आका के नहीं है, आका का नहीं, ये उससे अपने आप को छुड़वाएगा, कर्जा अदा करेगा। इस अब्द माजून ने कोई घर बेचा, क्या किया? कोई घर बेचा, तो इसका अपना ही आका उस पर शुफा करना चाहता है। कहते हैं शुफा कर सकता है। क्या कर सकता है? शुफा कर सकता है। और इसका आका कोई घर बेचता है, तो ये गुलाम जो है, जो मदयून है, ये उस आका के घर पर शुफा कर सकता है। इसका घर उसके साथ था, इसने खरीदा है, कारोबार कर रहा है, उसके जमीन बेच रहा है, खरीद रहा है। तो अगर ये गुलाम कोई घर बेचे, तो इसका आका अगर पड़ोसी है तो वो क्या कर सकता है? इस पर शुफा कर सकता है। और आका अगर कोई घर बेचे और गुलाम उसका पड़ोसी है, साथ वाली जमीन उसने खरीदी हुई है, तो गुलाम क्या कर सकता है? उस पर शुफा कर सकता है। हालांकि बेचना एराज पर दलालत करता है। किस पर? एक आदमी एक चीज से क्या कर रहा है? मुंह मोड़ रहा है। और मेरा ही गुलाम एक चीज को बेच रहा है, तो उसको मैंने इजाजत दी है, तो मेरा तो उसका बेचना इसी तरह है जैसे मेरा बेचना। सूरत समझ में आ रही है? गुलाम का बेचना इसी तरह है जैसे किसका बेचना? आका का बेचना, क्योंकि आका ने इजाजत दी है। और बेचने की सूरत में तो शुफे का हक नहीं होता, क्योंकि बेचना तो एराज पे दलालत करता है, लेकिन यहां पर आका वो शुफा कर सकता है गुलाम के बेचे हुए घर पर, क्योंकि अब वो चीज इसकी मिल्कियत, आका की मिल्कियत नहीं है, बल्कि किसकी मिल्कियत है? गुलाम की मिल्कियत। सूरत समझ में आ रही है? इसी तरह आका कोई चीज बेचे तो वो किसकी तरह है? गुलाम के बेचने की तरह ही है, क्योंकि गुलाम उसी का है। तो आका बेचे तो गुलाम क्या कर सकता है उस पर? शुफा कर सकता है। हालांकि बेचना तो किस पर दलालत करता है? एराज पर। लेकिन यहां पर गुलाम चूंकि उन चीजों का मालिक हो रहा है, लिहाजा अब इनको अलग अलग शुमार किया जाएगा। आका का फेल अपना शुमार होगा, गुलाम के लिए उसका एतबार नहीं होगा, और गुलाम का फेल अपने लिए मोतबर होगा, आका के लिए उसका एतबार नहीं होगा। यानी आका का बेचना वो शुमार नहीं होगा। तो दोनों एक दूसरे की बेची हुई जायदाद पर शुफा कर सकते हैं। सूरत समझ में आ गई। अब देखिए किताब पर। वलिल अब्दिल माजूनी, और वो गुलाम जो कि माजून हो, जिसको इजाजत दी गई हो, मदयूनन, इस हाल में कि वो मदयून है, मकरूज है, उसके लिए हक शुफा साबित है। फी मबीई सैयदीही, सैयद कहते हैं आका को, मालिक को। फी मबीई सैयदीही, मबीय बाय बियो का क्या माना? बेचना। और मबीय जिस चीज को बेचा गया, तो वो जो उस गुलाब्दे माजून जो मदयून है, उसको हक है शुफे का। फी मबीई सैयदीही, अपने आका के मबीए में, यानी उसकी बेची हुई जायदाद में। वली सैयदीही फी मबीई, और उस आका को हक शुफा है। फी मबीई ऐ फी मबीइल अब्दिल माजूनी, उस अब्दे माजून की बेची हुई जायदाद में उसको शुफे का हक है। देखिए खुद बतला रहे हैं, ऐ तजिबु शुफातु लिल अब्दिल माजूनी, के शुफा साबित होगा उस अब्द के लिए जो माजून है। हाल कौन ही मदयूनन, इस हाल में कि वो गुलाम जो है मकरूज है। दैन मुहीतम बि रकबतिही व कस्बिही, ऐसा दैन मुहीतन, मुहीतन जिसने इहाता किया हुआ है, घेरा हुआ है, बे रकबती ही उसके रकबे को, यानी उसकी जात को भी, व कस्बी ही और उसकी कमाई को भी। फलहु शुफातु फी मा बा सय्यिदुहू, तो इस गुलाम को शुफे का हक है उस आकार में। मां से मुराद क्या है? आकार। उस आकार में बा सय्यिदुहू, जिसको उसका आका बेच दे। व कदालि सय्यिदि हक्कु शुफाती, और इसी तरह आका को शुफे का हक है। फी मा उस आकार में, उस जायदाद में, बा अल अब्दुल माजूनुल मजकूरु, जिसको वो अब्दे माजून जिसको जिक्र किया गया वो बेचे। वो अब्दे माजून जिसको जिक्र किया गया, क्या माना जिक्र किया गया? यानी वो मदयून है भाई, और ऐसा देन है जिसने उसकी जात और उसकी कमाई का इहाता किया हुआ है। तो वो इस आका इसके उस जमीन पर शुफा कर सकता है। बिना अन अला अन नमा फी यदिही, बिना बर इसके के वो जो उस गुलाम के हाथ में है, उसके कब्जे में है, मिल्कुन लहू, वो उस गुलाम ही की मिल्कियत है, आका की मिल्कियत नहीं है। वलिमन शरा अविश्तुर लहू लालिमन बा औ बी लहू औ जमीन लिदर्क, वलिमन शरा, और इसी तरह शुफा साबित है लिमन, उस शख्स के लिए, शरा जिसने खरीदा, जिसने किसी जायदाद को खरीदा, उसको शुफे का हक है उस जायदाद में। क्योंकि खरीदना वो एराज पे दलालत करता है या उस जायदाद में रगबत पे दलालत करता है? उस जायदाद में रगबत पे दलालत करता है, उस जायदाद से एराज पर दलालत नहीं करता। तो जब रगबत पर दलालत कर रहा है, तो ये जो खरीदार है इसको शुफे का हक है, इसको शुफे का ये माना है। वलीमन शरा, और शुफा साबित है लिमन, उस शख्स के लिए, शरा जो खरीदे। और खरीदने की दो सूरतें हैं, कोई या तो अपने लिए खरीदेगा या किसी दूसरे के लिए खरीदेगा। दूसरे के लिए खरीद रहा है, इसका मतलब है उसने इसको वकील बनाया था कि ये मेरे लिए जमीन खरीद लो। तो खरीदना दो तरह से हो सकता है, कोई या तो बतौर असील के खरीद रहा है, यानी खुद अपने लिए खरीद रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? असील। और अगर दूसरे के लिए खरीद रहा है, उसने इसको कहा था खरीदने का, तो ये खरीदना है बतौर वकील के, बतौर वकील के। तो खरीदने वाला वो चाहे असील हो चाहे वकील हो, वो जमीन पे शुफा कर सकता है। मसलन मैंने एक आदमी को वकील बनाया कि फलां जमीन मेरे लिए खरीदो, या कोई भी जमीन मेरे लिए खरीदो, और उसने जमीन खरीदी, और उस जमीन के साथ ही इस वकील की अपनी भी जमीन थी, और खरीदने के बाद इसने उस पर शुफा कर दिया। तो ये इसने खरीदा है इसालतन या वकालतन, वकालतन वकील होकर खरीदा है। तो आप कहेंगे वकील होकर खरीदे और फिर शुफा कर ले, ये तो हमें समझ में आता है, कोई असील होकर शुफा कैसे करेगा, अपने लिए खरीदे और फिर उस पर क्या कर दे, शुफा कर दे। नहीं भाई, उसकी सूरत भी बन जाती है। फुकहा को अल्लाह उनके करोड़ा दराजात बुलंद फरमाए, एक एक मसले को उन्होंने जब्त करके कितने प्यारे अंदाज में इकट्ठा एक एक बाब के अंदर उनको जमा करके हमारे लिए आसान फरमा दिया। अपने लिए खरीदे कोई और फिर उस पर शुफा कर दे, असील हो और शुफा कर दे, शुफा कर दे। सूरत यह कि मैं और जैद और बकर एक जमीन में शरीक हैं, मैं हूं और मेरे साथ जैद है और बकर, मैंने जैद से उसका हिस्सा खरीद लिया, जमीन में हिस्सा फैला हुआ है, हमने अभी तकसीम नहीं की, हदबंदी नहीं की, उस एक ही जमीन में हम तीनों शरीक हैं, हर हर जुज में मेरा भी हिस्सा, जैद का भी हिस्सा और बकर का भी हिस्सा, तो मैं इसमें से एक हिस्सा जैद से खरीदता हूं और अपने लिए खरीदता हूं, जैद का हिस्सा मैं खरीद लेता हूं, तो जैद का हिस्सा जैसे ही मैं खरीदता हूं बकर शुफा कर देता है, और मैं भी शरीक था या नहीं इसमें, तो मुझे भी क्या हक होगा, शुफे का हक होगा, तो मैं भी शुफा कर दूंगा। लिहाजा अब वो जो जैद का हिस्सा आएगा वो आधा बकर के पास चला जाएगा शुफे की वजह से और आधा मेरे पास पास आ जाएगा। अगर मुझे शुफे का हक ना होता तो सारा किसके पास चला जाता, बकर के पास। सूरत समझ में आ गई जी। तो मालूम हुआ जो शख्स खरीदे वो जमीन पर शुफे का शुफा कर सकता है, चाहे बतौरे असील के खरीदे चाहे बतौरे वकील के खरीदे। एक तीसरा शख्स रह गया, वो जो मुअक्किल है, क्या वो शुफा कर सकता है? वकील तो शुफा कर सकता है, लेकिन जिसने पीछे इस आदमी को वकील बनाया है, मैंने एक आदमी को वकील बनाया कि मेरे लिए क्या करो, जमीन खरीदो, वो वकील खुद क्या कर सकता है, शुफा कर सकता है, तो क्या मैं भी शुफा कर सकता हूं जो मुअक्किल है, जिसने वकील बनाया है? अब तो मैं खरीदने वाला नहीं ना, खरीदने की तो दो ही सूरतें थी, या बतौर असील के या बतौर वकील के। हां, मेरे लिए खरीदा गया है, मैं मुअक्किल हूं, तो क्या मैं भी शुफा कर सकता हूं? ये तीसरी सूरत आ गई। कहते हैं हां, मुअक्किल के कहने पर खरीदा जा रहा है, और खरीदना किस चीज पर दलालत करता है, रगबत पर और पसंद करने पर। मालूम हो उसको वाकार ये जायदाद क्या है, पसंद है, तो ये शुफा कर सकता है, इसको हक शुफा है। लिहाजा वकील शुफा करता है अगर तो वो भी कर सकता है, और मुअक्किल करना चाहे तो मुअक्किल भी कर सकता है। मसलन वकील ने मेरे लिए जमीन खरीदी, मेरे लिए जमीन खरीदी, और मेरे साथ वाला पड़ोसी उस पर क्या करता है, शुफा करता है, और साथ ही मेरा भी घर है, मैं भी उस पर क्या कर सकता हूं, शुफा कर सकता हूं। सूरत समझ में आ गई। तो देखिए किताब पर वलीमन शरा, और शुफा साबित है उस शख्स के लिए शरा जिसने खरीदा। इसमें कितनी सूरतें आ गई, दो, चाहे बतौर वकील के खरीदे चाहे बतौर असील के। और इसी तरह शुफा साबित है उस शख्स के लिए उश्तुरिया लहू, अविश्तुरिया लहू, या उसके लिए खरीदा गया, इससे कौन दाखिल हो गया, मुअक्किल दाखिल हो गया। ला लिमन बाआ, न कि उस शख्स को शुफे का शुफा उसके लिए साबित नहीं है, मन बाआ जिसने जमीन को बेचा। इसमें कितनी सूरतें आ गईं, दो, बेचने वाला या तो अपने लिए बेच रहा है यानी इसालतन बेच रहा है, या बतौरे वकालत के बेच रहा है यानी असील है या वकील। कोई अपनी जमीन बेचे और उसके साथ ही उसकी और भी जमीन है, और उसके साथ एक और शख्स भी है उसकी भी जमीन है, तो वो साथ वाला शुफा करता है, भाई इसकी बेचने वाले की अपनी और भी तो साथ जमीन है, तो क्या ये खुद शुफा कर सकता है? कहते हैं नहीं, ये खुद शुफा नहीं कर सकता, क्योंकि बेचना किस पर दलालत करता है, एराज पर। मालूम हुआ ये जमीन इसको नापसंद है, इसे जान छुड़ाना चाहता है, और शुफा तो किस पे दलालत करता है, रगबत पर, कि वो रागिब है, तो लिहाजा अब ये शुफा का हक इसको नहीं होगा भाई। या मैंने एक आदमी से कहा कि मेरे लिए ये जमीन बेच दो, वो वकील बन गया, उसने मेरे लिए वो जमीन बेची और उस जमीन के साथ ही वकील का अपना घर था, अब वो शुफा करना चाहता है। कहते हैं नहीं भाई, शुफा नहीं कर सकता, क्योंकि उसी ने तो बेची है, वकील है ना, और बेचना किस पर दलालत करता है, एराज पर। तीसरी सूरत मुअक्किल भाई, मैंने जैद से कहा कि मेरी यह जमीन बेच दो। अब उसने जमीन बेची और साथ वाला आदमी शुफा करना चाहता है और यह मुवक्किल का भी साथ उसकी जमीन है या मकान है तो वो भी शुफा करना चाहता है, तो क्या मुवक्किल शुफा कर सकता है? कहते हैं नहीं, वो भी शुफा नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं ला लिमन बाआ औ बीआ लहू, और शुफे का हक नहीं होगा उस शख्स के लिए जिसने बेचा, चाहे असील के तौर पर बेचा हो चाहे वकील के तौर पर, औ बीआ लहू या वो शख्स जिसके लिए जमीन को बेचा गया, यानी चाहे वो मुवक्किल हो, इसको शुफे का हक नहीं है। औ जमीन अली दरकी, या वो दर्क का जामिन हुआ तो इसको भी शुफे का हक नहीं। दर्क कहते हैं तावान और नुकसान को, तावान और नुकसान। भाई एक आदमी एक जमीन खरीदना चाहता है लेकिन उसको खौफ है कि पता नहीं ये जमीन किसी और की ना निकल आए, मेरे पैसे ना डूब जाएं, तो मैं उसको जमानत देता हूं कि भाई आप बेफिक्र होकर जमीन खरीदें, अगर इसमें कोई नुकसान हुआ तो जमीन छुड़ाकर देना मेरा काम है या पैसे देना मेरा काम है। तो मैंने उससे कहा कि मैं जमीन छुड़ाकर देना मेरा काम है, तो देखो मैंने इसको दर्क की जमानत दे दी, नुकसान की जमानत दे दी। अब उसने जमीन खरीद ली और जमीन खरीदी, अब मैं उस जमीन पर शुफा करना चाहता हूं, साथ ही मेरी भी जमीन है, तो क्या मैं शुफा कर सकता हूं? फुकहा फरमाते हैं नहीं, भाई आप ही ने तो जमानत दी थी दर्क की, आप कैसे शुफा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि जमाने दर्क का क्या माना था कि आप उसको जमीन छुड़ा कर देंगे, नुकसान उसका नहीं होने देंगे, तो आपके जिम्मे तो था छुड़ा कर देना, और शुफा करेंगे फिर तो आप इसको कब्जा करके लेंगे, कब्जा कर लेंगे, अपने पास रोक लेंगे, तो ये तो उसके बिल्कुल बरअक्स हो गया। आपने तो कहा क्या वादा किया था मैं छुड़ा कर दूंगा, और ये तो आप क्या कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, अपने पास रोक रहे हैं, तो ये उसके बिल्कुल मुखालिफ है, लिहाजा इस सूरत में आपको शुफे का हक नहीं है। भाई आप ही ने तो जमानत दी थी बै की कि बै हो जाए, और बै की जब आपने जमानत दे दी तो बै तो किस पर दलालत करती है? एराज पर दलालत करती है। आप चाहते हैं ये जमीन बिक जाए, इसका मतलब है आप इससे एराज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ये माना है औ जमीना लिद दर की, या वो जमीन हुआ दर्क का तो उसको भी शुफे का हक नहीं। ऐता जिबू शुफा तो लिल मुश्तरी, शुफा साबित है मुश्तरी के लिए, सवा उनिश्तरा इसालतन औ वकालतन, बराबर है कि इसने खरीदा हो इसालतन या वकालतन, यानी असील होकर या वकील होकर। वकदा तजिबु शुफातु लिमन इश्तुरी लहू, और इसी तरह शुफा साबित होगा उस शख्स के लिए जिसके लिए वो आकार खरीदी गई। अलिमन वक्कला आखरा बिशिराई, यानी वो शख्स उस शख्स के लिए शुफा साबित होगा कि जिसने वक्कला आखरा दूसरे शख्स को वकील बनाया बिशिराई खरीदने का। फश तारा ली अजलिल मुअक्किली, तो उस वकील ने खरीद लिया उस जायदाद को ली अजलिल मुअक्किली, किसके लिए? मुअक्किल की वजह से, मुअक्किल के लिए खरीद लिया। वल मुअक्किलु शफीउन, इस हाल में कि मुअक्किल ही शफीअ है। ये मुअक्किल मेरी किताब में लिखा है, ये गलत लिखा है भाई, मुअक्किल इस हाल में कि वो मुअक्किल ही शफी है, तो कान लहु शुफातु, तो उसको शुफे का हक है। वफाइदतुहु, और फायदा इसका यह है, फायदा उसका यह है, भाई बतलाना यह चाहते हैं कि जो अपने लिए खरीदे या जो खुद खरीदे उसको शुफे का हक देने का क्या फायदा? तो मैंने सूरत बता दी, फायदा हो रहा था या नहीं शुफे का, हां तो वही अब फायदा जिक्र करने लगे कि भाई इसका फायदा है, शुफे का हक उसको मिलेगा। कहते हैं वफाइदतुहु, और फायदा इसका यह है कि अन्नहु लौकान अल मुश्तरी अविल मुवक्किलु बिश्शिराई शरीकन। अच्छा, इन्होंने और सूरत बनाई, सूरत यह कि जैद और बकर में एक जमीन मुश्तरका है, दोनों उसमें शरीक हैं, तकसीम नहीं की हुई, हर हर जुज में दोनों का हिस्सा है। बकर का हिस्सा जैद ने खरीद लिया, बकर का हिस्सा जैद ने खरीद लिया। अब वो साथ वाला पड़ोसी इस पर शुफा करना चाहता है, کہتے ہیں بھائی خریدا کس نے ہے؟
زید
نے. اور زید کیا تھا اس زمین میں؟ شریک. یعنی وہ شریک ہے فی نفس المبیع. اور جو ساتھ والا پڑوسی وہ ہے جار ملاصق. اور شریک فی نفس المبیع کا درجہ سب سے مقدم ہے، لہذا پہلا حق شفے کا اس کو ہوگا اور آخری حق کس کو ہوگا؟ جار کو. اور جب تک یہ شریک فی نفس المبیع موجود ہے، جار کو شفے کا حق نہیں، لہذا اس صورت میں اب دیکھو جار شفا نہیں کر سکتا. تو زید نے جس نے خریدا ہے وہ تو شریک فی نفس المبیع ہے، لہذا شفے کا حق اس کا اول بنتا ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے جار کو شفے کا حق نہیں. جب جار کو شفے کا حق نہیں تو جار اب اس سے وہ زمین نہیں لے سکتا، اور وہ زمین اسی کے پاس رہے گی. اس نے بکر سے خرید لی، اب ساری زمین کا یہ مالک بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے وفائدتہ انہ لو کان المشتری او الموکل بالشراء شریکن، کہ اگر مشتری خود یا وہ جو موکل بالشراء ہے، جس نے وکیل بنایا تھا شراء کا، یہ وہ جو موکل وہ شریک ہیں، ولی داری شریک ان آخر، اور گھر کا ایک گھر میں ایک اور بھی شریک ہے، گھر میں ایک اور بھی
شریک.
انہوں نے تین شریکوں والی صورت بنا لی، زید عمر بکر، یہ تینوں کیا ہیں؟ شریک ہیں. اور صورت مسئلہ میں نے بتلا دی تھی کہ مثلا ان میں سے ایک شخص زمین دوسرے کے ہاتھ فروخت کرتا ہے تو باقی دونوں کو شفے کا حق ہوگا، خریدار کو بھی اور دوسرے کو بھی، تو وہ زمین آپس میں آدھی آدھی تقسیم کر لیں گے. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لو کان المشتری او الموکل بالشراء شریکن، اگر مشتری یا موکل بالشراء جو ہیں وہ شریک ہیں، ولیدار شریک ان آخر، اور اس گھر کا ایک اور شریک بھی ہے، فلہما الشفعۃ، تو دونوں کو شفے کا حق ہوگا، یہ خریدار یا موکل بالشراء کو بھی اور وہ جو دوسرا شریک ہے اس کو بھی شفے کا حق ہوگا. صورت ذہن میں آئی کہ نکل گئی، میں نے بتلایا تھا زید عمر بکر تینوں ایک زمین میں شریک ہیں، زید نے اپنا حصہ بیچ دیا کس کو؟ بکر کو. اور اب عمر شفا کرنا چاہتا ہے تو بکر بھی شفا کر سکتا ہے، خریدار بھی بکر اور شفا بھی وہی کر رہا ہے، تو اب وہ جو حصہ ہے بکر اور عمر کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. ولو کان ہوا شریکن، ہاں دوسری صورت کہ جو خریدار ہے، مثلا زید اور عمر صرف شریک ہیں، اور زید نے عمر سے اس کا سارا حصہ خرید لیا، اب جار شفا کرنا چاہ رہا ہے، تو زید جس نے خریدا ہے وہ ہے شریک فی نفس المبیع، اور شریک فی نفس المبیع کے ہوتے ہوئے جار ملاصق کو شفے کا حق نہیں ہے، لہذا مبیع اسی کے پاس رہے گا. تو کہتے ہیں ولو کان ہوا شریکن، اور اگر وہ خریدار جو ہے وہ شریک ہوا، ولیدار جارون، اور اس گھر کا کوئی اور جار بھی ہے، فلا شفعت للجار مع وجودہ، تو جار کے لیے شفے کا حق نہیں ہے مع وجودہ اس شریک کے ہوتے ہوئے، ولا تکون للبائع شفعت، اور بائع کو شفے کا حق نہیں ہوگا، بائع کے لیے شفا نہیں ہوگا، سواء کان اصیلا او وکیلا، چاہے وہ بائے اصیل ہو یعنی اپنے لیے خریدنے والا ہو، او وکیلا یا وکیل ہو دوسرے کے لیے خریدنے والا ہو، وکذا لا شفعت لمن بیع له، اور اسی طرح شفے کا حق نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اس زمین کو بیچا گیا، یعنی وہ جو موکل ہے، موکل بالبیع، ای ان وکل بالبیع والموکل شفیع، دیکھا اوپر بھی آیا تھا والموکل شفیع، اس حال میں کہ موکل کیا ہو؟ شفیع، یہاں بھی آ رہا ہے والموکل شفیع، تو کہتے ہیں ای ان وکل بالبیع، اگر اس نے وکیل بنایا بیع کے لیے، والموکل شفیع، اور حال یہ ہے کہ موکل ہی شفیع ہے، فلا شفعت له، تو اس کو شفے کا حق نہیں ہے، وکذا اذا ضمنت درک، اسی طرح اگر اس نے درک کی یعنی نقصان اور تاوان کی ضمانت دی، فبیع، تو اس گھر کو یا جائیداد کو بیچا گیا، وہ شفیع له، اور یہی ضمانت دینے والا اس کا شفیع بھی ہے، یہ شفا کرتا ہے، تو لا شفعت له، اس کے لیے شفے کا حق نہیں ہوگا، لأن الاستخلاص علیہ، اس لیے کیونکہ چھڑانا اس پر ہے، اس کے ذمے تو چھڑانا ہے، اس نے تو ضمانت دی ہے اور شفا کر کے تو یہ اس پر قبضہ کر رہا ہے، اپنے پاس روک رہا ہے، تو یہ تو اس کے بالکل برعکس ہو گیا، لہذا اس کو شفے کا حق نہیں ہوگا. چلیے بس بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.